राघवेंद्र अपने कमरे में सोने जा चुका था। मानव वहीं हॉल में बैठा वैदेही और राघवेंद्र के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनमें से कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ। वैदेही जी ने सुबह कहा था कि गांव में अपने किसी स्टिंग ऑपरेशन के लिए आई थी, जबकि दादा ने भी इसी से रिलेटेड कुछ बात बताई थी। वैदेही जी कुछ खुलकर बताने ही थी कि वो स्टिंग ऑपरेशन किसका था, जबकि दादा का कहना है कि उनकी जान को खतरा हो सकता था, इसलिए उनकी जान बचाने के लिए वो उनका पता लगाना चाहते थे। बप्पा करें दादा सही हो, हम सबकी उम्मीदें बंधी हैं उनसे, लेकिन साथ ही दिल बहुत घबरा रहा है कि अगर दादा गलत हुए तो। मानव खुद से बात कर रहा था। बोलते हुए वो अचानक रुक गया और फिर कहा, नहीं, मेरे राघव दादा कभी गलत हो ही नहीं सकते। मैं भी किन चक्रों में पड़ गया। उस दिन इंटरव्यू के दौरान भी वैदेही जी जानबूझकर आड़े टेढ़े सवाल पूछकर दादा की इमेज खराब करने की कोशिश कर रही थी। उसके बावजूद दादा ने घर पर उन्हें इतना मान सम्मान दिया, आई ने उन्हें इतना प्यार दिया, जरूर उन्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। मानव जैसे तैसे करके अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा था। खुद को रिलैक्स करने के लिए वो सोने चला गया। सुबह के 3:30 बज रहे थे। न्यूज़ 24/7 के ऑफिस में गिने चुने रिपोर्टर मौजूद थे, जो कि रात को चैनल हैंडल करने का काम करते थे। सभी अपनी अपनी जगह बैठकर काम कर रहे थे। इन सब के बीच वैदेही देव और प्रतीक के साथ प्रतीक के केबिन में बैठी थी। वैदेही, तुम कुछ परेशान लग रही हो। पहले पूछने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब से यशवर्धन से मिलकर आई हूँ तब से कोई खोई हुई लग रही है। सब ठीक तो है ना? प्रतीक ने वैदेही से पूछा। वो काफ़ी परेशान और खोई हुई लग रही थी। मैं यशवर्धन से मिलकर परेशान नहीं हूँ, इनफैक्ट उसके साथ तो मैंने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। ओ रियली? देव ने वैदेही को परेशान करने के लिए कहा। अच्छा टाइम एंड ऑल, क्या बात है वैदेही मैम? चुप करो, वैदेही ने उसे डांटते हुए कहा। मेरा वहाँ रुकने का मन नहीं था, लेकिन यशवर्धन की जिद करने पर मुझे रुकना पड़ा। हालांकि मुझे वहाँ रुकने का कोई अफसोस नहीं हो रहा है, मैंने इतने दिनों बाद सच में काफ़ी अच्छा टाइम बिताया। अगर यशवर्धन के साथ सब कुछ सही था तो फिर तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? प्रतीक ने एक बार फिर पूछा। मेरी परेशानी का कारण राघवेंद्र प्रताप सिंह का छोटा भाई मानव है। वैदेही के बताते ही प्रतीक और देव उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। ऐसे मत देखिए, कल राघवेंद्र के लिए इतना बड़ा दिन है तो उसके परिवार का यहाँ आना जाहिर सी बात है। मानव भी यहाँ पर आया हुआ होगा। वो मुझसे सवाल पूछ रहा था कि मुझे विद्या सावंत बनने की जरूरत क्यों पड़ी। तो क्या वो राघवेंद्र के काले कारनामों से अभी तक अनजान है? प्रतीक ने पूछा। वैदेही ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, अनफॉर्चुनेटली हाँ, और वो इतना इनोसेंट है कि जाकर राघवेंद्र से सीधे सीधे पूछना भी नहीं चाहता। अब समझ आया कि राघवेंद्र की कमजोरी मानव कैसे हैं। तो क्या आपने मानव को सब कुछ बता दिया? देव ने पूछा। नहीं, उसके चेहरे की मासूमियत और साफ दिल देखकर कुछ बताने को मन ही नहीं करता, वैदेही ने खोए हुए स्वर में कहा। उसकी आंखों के सामने मानव का चेहरा घूम रहा था। हाँ, अगर वो इतना सीधा है तो उसे इन सब में इन्वॉल्व करना सही नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम जब उसे सच का पता चलेगा तो सबसे ज्यादा दिल उसी का टूटेगा, प्रतीक ने कहा। लेकिन उसका जिम्मेदार खुद राघवेंद्र होगा। जब उसने अपने सारे गुनाह करने से पहले अपने भाई के बारे में नहीं सोचा तो हम क्या कर सकते हैं? देव ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। मानव के बारे में सोचकर उन तीनों को ही बुरा लग रहा था, लेकिन उसकी वजह से वो अपने काम से पीछे भी नहीं हट सकते थे। प्रतीक ने बात का रुख बदला और कहा, अच्छा उसे छोड़ो, तुम लोग हापुस कहाँ जाने वाले थे? उसका क्या हुआ? कल जाने का सोचा है, कल शाम तक जाएंगे। वैदेही के मुंह से कल शाम को जाने की बात सुनकर देव हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? आपको तो अर्ली मॉर्निंग ट्रैवलिंग करना पसंद है, फिर आपने कल शाम जाने का कैसे सोचा? हाँ, इस बार हैरान तो मैं भी हूँ, प्रतीक ने हल्का हंसते हुए उसकी बात पर सहमति जताई। आप दोनों को इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे कल शाम को जाने का रीजन ये है कि कल शाम को इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाएंगे तो राघवेंद्र और उससे जुड़े हुए लोग बिजी रहेंगे। हो सकता है कि हापुस गाँव में उसका जो भी रिश्तेदार है वो भी यहाँ पर आया हुआ हो। ऐसे में उसके बारे में पता लगाने में इससे अच्छा टाइम और कोई नहीं हो सकता, वैदेही ने पूरी बात समझा दी। हाँ, और मेरे मन में ऐसे ही लड्डू फूट रहे थे, देव ने मुंह बनाकर कहा। मगर हम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? यू डोंट नो मैम, मैं तो अपना सामान पैक करके यहाँ पर ले भी आया था, देव ने बच्चों जैसा मुंह बनाया। उसे वैसा करते देख प्रतीक और वैदेही हंसने लगे। उन्हें हंसता देख देव का मुंह फिर बन गया। अच्छा, अब आप दोनों मेरा मजाक भी बनाओगे? वैदेही ने अपनी हंसी दबाकर बोला। वैसे देखा जाए तो तुम्हारा इस वक्त कोई काम नहीं है यहाँ पर। वैसे देखा जाए तो मेरा और तुम्हारा भी यहाँ कोई काम नहीं है वैदेही, प्रतीक ने वैदेही को आंखें दिखाकर कहा। तुमने खुद तो लेट नाइट तक काम करने की आदत डाल रखी है, हमें भी अपने साथ लगा लिया। अब जब यहाँ पर बैठे ही है तो आगे का प्लान एग्जीक्यूट कर देती हूँ, वैदेही बता रही थी कि तभी देव बीच में बोल पड़ा। इसमें एग्जीक्यूट क्या करना है? हमेशा की तरह मैं अपना लुक बदल कर देव सावंत बन जाऊंगा और आप भी पिछली बार की तरह विद्या सावंत। हाँ, ताकि राघवेंद्र हमें पिछली बार की तरह पहचान सके।
हम हापुस गांव में जा रहे हैं देव, गोवा में नहीं। वहां पर लड़कियों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, खुलेआम रेड लाइट एरियाज चलते हैं। ऐसे में मैं वहां पर विद्या सावंत बन के जाऊं या वैदेही रघुवंशी, किसी भी तरह से सेफ नहीं रहूंगी। तो क्या तुम नहीं जा रही, प्रतीक ने पूछा। ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं नहीं जा रही, मैंने सोचा है कि हम दोनों ही लड़का बनकर जाएंगे। लाइक पिछली बार देव राघवेंद्र के घर पर गया था तो उसने पगड़ी बांध रखी थी और वो सरदार का लुक लेकर गया था, तो क्यों ना मैं भी उसी की तरह। हाँ वैदेही मैम, आप सरदार के लुक ने लगेगी भी काफी क्यूट, देव ने हंसते हुए कहा। जवाब में वैदेही ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो वो चुप हो गया। हम वहां पर सोशल वर्कर बनकर जाएंगे, जो कि लड़कियों के विकास और उनकी एजुकेशन को बढ़ावा देने वाले किसी एनजीओ से जुड़े होंगे, वैदेही ने आगे बताया। आइडिया तो काफी अच्छा है, इसी बहाने वहां के लोगों के मन में क्या चल रहा है इसके बारे में पता चल जाएगा, प्रतीक ने कहा। महाराष्ट्र विकास पार्टी का चुनाव जीतना तो तय है, मैं ये भी जानती हूँ कि राघवेंद्र के सारे चमचे उसके आसपास ही होंगे। चुनाव जीतने के बाद जब महाराष्ट्र विकास पार्टी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम पब्लिक करेंगे, उसके बाद दोनों को ही सिक्योरिटी में रखा जाएगा। राघवेंद्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और हम उसके नाक के नीचे से सब कर लेंगे, वैदेही ने जो भी प्लान बनाया था वो उनके सामने खोल दिया था। उसका प्लान सुनने के बाद प्रतीक ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब हर बार तुम्हारी क्या तारीफ करना, तुम अपने काम में बेस्ट हो। और मैं, देव ने पूछा, और तुम दुनिया के सबसे बेस्ट असिस्टेंट हो, जिसे चाहे अंदर से कितना भी डर क्यों ना लगे लेकिन मेरी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हो। फिर चाहे आधी रात को मुझे बिल्डर के गुंडों से बचाने में मदद करना हो या उस रात जंगल में गोलियों की आवाज़ सुनकर मेरे साथ आना हो, वैदेही ने देव की तारीफ में कहा। हाँ हमारा देव काफ़ी ब्रेव है, प्रतीक ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सही कहा, आपको पता है प्रतीक सर, राघवेंद्र का इंटरव्यू होने वाला था, तब मैंने इसे मना किया था कि मेरे साथ ना आए, उसके लोग इसे जानते थे, वहाँ पर सरदार का लुक लेकर जाने का आइडिया इसी का था, ये मुझे वहाँ भी अकेले नहीं जाने देना चाहता था।
हयो रब्बा, इतनी तारीफ, मैंने तो मर ही जाना है, देव ने शर्माते हुए अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। और इसी बात पर कल तुम दोनों शाम से पहले ऑफिस में मुझे अपना मुंह नहीं दिखाओगे, प्रतीक ने सख्त आवाज में कहा। जी सर, वैदेही और देव दोनों एक साथ बोल पड़े। इस बार तो मुझे भी आराम की जरूरत है, वैदेही ने कहा। प्रतीक ने थम्स अप करके हामी भरी। सुबह के 5 बज चुके थे, एक दूसरे को बाय बोलकर तीनों घर को जा चुके थे। सुबह के 6 बज रहे थे। यशवर्धन अपने बंगले में नंद देसाई के साथ था। वो परेशान होकर नीचे में इधर उधर चहलकदमी कर रहा था और बार बार घड़ी में समय देख रहा था। सर, आपके बार बार घड़ी देखने से वक्त जल्दी नहीं चलने लगेगा, वो अपनी रफ्तार से ही चलेगा, पास में एक कुर्सी पर बैठे अनंत देसाई ने कहा। नहीं देसाई जी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो आदमी आज शाम तक आने वाला था और अब तक नहीं आया, यशवर्धन ने रुककर जवाब दिया और अपनी बात खत्म होते ही फिर से वहां पर चहलकदमी करने लगा। आ जाएगा सर, आ जाएगा, पहले सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली थी लेकिन आपने मर्डर वेपन भेज दिया तो उसकी भी जांच में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। और कितना टाइम लगेगा देसाई जी, क्या रिपोर्ट्स चुनाव के नतीजे आने के बाद आएगी? हमारे पास सिर्फ कल का टाइम है, परसों त्यागी जी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देंगे, हमें नहीं लगता उसके बाद राघवेंद्र अपने कदम पीछे खींचने वाला है, यशवर्धन ने जनाब दिया। घूमते घूमते उसके भी पैरों में दर्द होने लगा था, वो वहां पर बैठ गया और चाय की केतली से चाय निकालकर पीने लगा। उसे आराम से बैठे कुछ टाइम ही हुआ था कि इतने में एक सिक्योरिटी गार्ड अंदर आया। सर आपसे कोई मिलने आया है, कोई मेहुल वर्मा करके नाम बता रहा है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, यशवर्धन के चेहरे पर चमक आ गई, वो खड़ा हुआ और जल्दी से बोला, उसे इसी वक्त यहाँ पर लेकर आओ, और हाँ याद रखना कि किसी को भी अंदर मत आने देना, किसी को मतलब किसी को भी नहीं, जब तक कि वो आदमी यहाँ से चला ना जाए। सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी बात पर हामी भरी और सलाम करके वहां से चला गया। कुछ देर बाद लगभग 35 साल का एक आदमी आया, ये मेहुल वर्मा था जो कि निकोला में हुए रिपोर्टर की हत्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आया था। उसे देखते ही यशवर्धन के चेहरे पर चमक आ गई। क्या सारी रिपोर्ट्स लेकर आए हो, उसने पूछा। मेहुल वर्मा ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, माफ कीजिएगा मुझे आने में देर हो गई, दोनों रिपोर्ट्स के आने के बाद उन्हें स्टडी करना था, बस उसी में वक्त लग गया, मेहुल वर्मा ने अपनी देरी से आने की सफाई दी। वो सब छोड़ो और ये बताओ कि रिपोर्ट में क्या लिखा है, अनंत देसाई ने बोलते हुए मेहुल वर्मा को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो वहां पर बैठ गया, वो रिपोर्ट को खोलने लगा। समय की बीतती हर घड़ी के साथ यशवर्धन के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी।